हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरमान ने जैसे ही अपनी माँ गजाला जी को देखा, वो अपने भयानक अतीत में खो गया। उसके अतीत में खो जाने की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अरमान की ऐसी हालत देखकर अरहम ने उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोर कर रख दिया। तब अरमान अपने अतीत से निकलकर अपने आज में आ गया। उस दिन अरमान के जीवन का सबसे शर्मनाक क्षण था। वो स्कूल में हमेशा से ही एक होनहार विद्यार्थी था, जो हमेशा क्लास में टॉप आता था। उसी स्कूल में उसके साथ इतना बद्दा मजाक हुआ कि वो उसे सह नहीं पाया और उस चित्र बनाने वाले लड़के को उसने मार मार कर अधमरा कर दिया। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उस लड़के पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उसे पूरे 6 महीने के लिए जुवेनाइल होम भेज दिया गया। 6 महीने बाद भी अरमान के लिए सारे जख्म एकदम नए और ताज़ा थे। उसका एक भी जख्म नहीं भरा था और आज गजाला जी को अपने सामने देखकर अरमान के पुराने जख्म एकदम से ताज़ा हो गए, मानो ये सब कल की ही बात हो। अरमान अब कड़ी और गहरी नज़रों से गजाला जी को देख रहा था। तभी अरमान ने अपने एक गार्ड के हाथ से बंदूक ली और सीधा अरहम के माथे से सटा दी। अरहम चौंक कर अरमान की ओर देखने लगा। अरहम को अरमान के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी और वो अरमान को सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी अरमान अरहम से बोला, क्या तुझे पहले से पता था कि ये औरत यहाँ है? तब अरहम एक नज़र गजाला जी पर डालता हुआ अरमान से बोला, हाँ भाई। उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तब अरमान गुस्से से उसकी ओर दांत पीसते हुए बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इस औरत से मिल चुका है? गुस्से के मारे अरमान की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गईं। तभी गजाला जी ने थोड़ी हिम्मत की और वो अरमान की बंदूक की नोक के सामने जाकर खड़ी हो गईं। अकरम और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम से इस तमाशे को देख रहे थे। तभी सबकी नज़र बचाकर अकरम ने लगातार कुछ SMS किसी को भेज दिए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सामने हो रहे तमाशे को देखने लगा। गजाला जी को अपनी बंदूक के सामने देखकर अरमान का खून खौल उठा और वो बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अगर आप अभी मेरे सामने से नहीं हटी तो मैं आप पर गोली चलाने में एक पल के लिए भी संकोच नहीं करूँगा। तब गजाला जे अरमान की आंखों में अपने लिए शदीद नफ़रत देख चुकी थीं। जब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति उनकी जान किसी भी वक्त ले सकता है, तो गजाला जी को अपने बचाव का केवल एक ही रास्ता नज़र आया और वो सीधी अरमान के पैरों में गिर गईं और बोलीं, बेटा, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और शायद जिनके लिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेटा, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, पर बेटा प्लीज़ बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका दे दो। गजाला जी के आंसू अरमान के पैर पर गिरने लगे। अरमान ने एक नज़र उठाकर गजाला जी को नहीं देखा। तभी अरहम अरमान के सामने गया और बोला, भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी माँ है, जन्म दिया है इन्होंने हमें, आप इस तरह से इनकी जान नहीं ले सकते हैं। तब अरमान बोला, अरहम, तू अच्छे से जानता है मैंने जेल से आने के बाद कसम खाई थी कि ये औरत जब भी मुझे मिलेगी मैं जान ले लूँगा इसकी, और आज मेरी वो कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। तुम हट जाओ मेरे सामने से, वरना आज मैं तेरी भी जान ले लूँगा। ऐसा कहकर अरमान ने अरहम को अपने सामने से हटा दिया और बंदूक के ट्रिगर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अरहम अब पसीना पसीना हो गया था। उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे करे। जब उसने देखा कि अरमान अब गजाला जी पर शूट करने ही वाला है, उसने अपनी माँ की ओर देखा। गजाला जी ने अपनी आँखें बंद कर रखी थीं, मानो वो अब अपने गुनाह की सज़ा पाने के लिए तैयार थीं। उन्हें यकीन हो चुका था कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। उन्होंने एक नज़र अरहम को देखा और फिर अरमान की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो अब अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार थीं। अरमान ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, तभी एक ज़ोरदार आवाज़ वहां गूंजी। रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और वो डर के मारे अकरम से चिपक गई थी। लेकिन धीरे धीरे रिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा गजाला जी अपना सिर झुकाए घुटनों के बल बैठी हुई थीं और अरहम अरमान की बंदूक का निशाना ऊपर किए हुए खड़ा हुआ था। अरहम ने अरमान की बंदूक का निशाना किसी और दिशा में कर दिया, जिससे गजाला जी की जान बच गई। अरमान गुस्से भरी नजरों से अरहम की ओर देख रहा था और बोला, तुम्हारी इतनी जरूरत, तूने अरमान ठाकुर की बंदूक का रुख बदल दिया। ऐसा कहकर अरमान ने एक जोरदार तमाचा अरहम के मुंह पर दे मारा, जिससे अरहम की नाक से खून आना शुरू हो गया, क्योंकि अरमान का हाथ अरहम के मुंह पर एक लोहे के हथौड़े के जैसा पड़ा था। अरमान का पूरा शरीर अब लोहे का बन चुका था। ज़ोया की याद में उसने दिन रात अपने आप को टॉर्चर किया था और उस टॉर्चर का ही नतीजा था कि अरमान अब एक बाहुबली टाइप बेहद शक्तिशाली बन चुका था। अभी अरमान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तब अरहम ने अरमान का हाथ पकड़ा और उसे अभी राठौड़ के हॉल में दूसरे सिरे पर ले गया और वहां उसने अरमान से कहा, भाई एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो और उसके बाद जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना। लेकिन अरमान के सिर पर उस समय खून सवार था, वो किसी की कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। और तब अरहम अरमान का हाथ झटकते हुए बोला, मेरा हाथ छोड़ अरहम, मैं आज इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब अरहम बोला, भाई आप मेरी बात सुनिए, ये औरत हमारे काफी काम आ सकती है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तब अरमान अरहम से बोला, तू चुप कर, मैंने कहा ना, मैं इस औरत को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी मैं इस औरत का सच छुपाने के लिए माफ नहीं करूंगा। तब अरमान अपनी बंदूक को एक बार फिर सेट करने लगा और बोला, तू यहीं खड़ा रहे, समझा तू, मैं अभी जाकर इस औरत के भेजे में ये सारी गोलियां उतार कर आता हूँ। तब अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, पहले तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे तुम करना। अरमान बोला, नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, देख अरहम, मेरे सिर पर इस वक्त खून सवार है, मैं कहता हूँ तू छोड़ दे मेरा हाथ और मेरे रास्ते से हट जा। तब अरहम बोला, नहीं भाई, आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, आप समझ नहीं रहे, हमें उनकी जरूरत है। तब अरमान बोला, तू पागल हो गया है, भला उस औरत की हमें क्या जरूरत। तब अरहम थोड़े तेज आवाज में बोला, जरूरत है भाई, जरूरत है, हमें ज़ोया के लिए उस औरत की जरूरत है। जैसे ही अरमान ने ज़ोया का नाम सुना, वो एकदम से बर्फ की तरह जम सा गया और उसका गुस्सा, नफरत, मानो सब एक झटके से कहीं गायब हो गया और वो अरहम की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। तब अरहम बोला, हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, हमें इस औरत की जरूरत सिर्फ और सिर्फ ज़ोया के लिए है। तब अरमान बोला, मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा, आखिर तो कहना क्या चाहता है। तब अरहम ने शुरू से लेकर आखिर तक अरमान को सारी बात बता दी और बोला,
भाई आपको क्या लगता है मैं इस लालची औरत के झांसे में आ जाऊंगा? नहीं भाई, नहीं। जितनी नफरत आप इस औरत से करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं इनसे नफरत करता हूँ। जिस दिन मैंने इन्हें पहली बार देखा मेरा भी मन किया कि इनकी जान ले लूं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हमारी अपनी माँ यहाँ के बाहुबली अबीर राठौर की सौतेली माँ है, तब मैंने इनको ज़ोया को पाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का फैसला किया। भाई आप तो जानते हैं इन्होंने अपने मतलब के लिए हम मासूम छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया, और इतना ही नहीं, हमारे नाम पर इन्होंने अबीर के पिता को फंसाया और फिर हमेशा के लिए हमें छोड़कर अमेरिका चली गई। यहाँ आकर इन्होंने अबीर की माँ को भी अपने रास्ते से हटा दिया और यही कारण है कि अबीर भी इनसे बेहिसाब नफरत करता है। लेकिन भाई अगर हमें ज़ोया चाहिए तो हमें इनका सहारा लेना होगा। अबीर की जिंदगी में घुसने के लिए हमें इस लालची औरत को अपनी सीढ़ी बनाना होगा। भाई आप जितना सोच रहे हैं ज़ोया को ले जाना उतना आसान नहीं है। ज़ोया और हमारे बीच अबीर राठौर एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तब अरमान अरहम से बोला, आखिर तो उस अबीर राठौर से इतना डरा हुआ क्यों है? क्या तुझे अपने भाई की ताकत पर भरोसा नहीं है? तब अरहम बोला, भाई मुझे आप पर और आपकी ताकत पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन भाई आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप ज़ोया को इस बार ताकत के बलबूते पर हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़ोया को अगर हासिल करना है तो हमें इस बार दिमाग से काम लेना होगा। अगर हमने अबीर राठौर के सामने अपनी ताकत दिखाई तो वो एक झटके में ही हम लोगों को मसल कर रख देगा। तब अरमान गुस्से से अरहम की ओर देखने लगा। अरहम का बार बार अबीज की तारीफ करना और उसकी ताकत के बारे में बखान करना अरमान को अंदर तक तपा रहा था और वो अरहम से बोला, बुला अपने उस अबीर राठौड़ को, मैं आज तुझे दिखाता हूँ अरमान ठाकुर क्या चीज है। अरमान ने बड़े ही घमंड से कहा। अरमान का घमंड देखकर अरहम बेहद हैरान था और वो गौर से अपने भाई को देखने लगा। वाकई आज उसे उसका भाई काफी अलग और बदला बदला सा लग रहा था। तभी अचानक बाहर की ओर गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अरमान ने अरहम की ओर देखा और अचानक चल रही गोलियों की आवाज़ सुनकर रिया कांप उठी और उसने अकरम की बाजू को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रिया ने अकरम की ओर देखा तो उसने देखा अकरम का मुंह एकदम से सपाट था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं थे। रिया अकरम को इतना शांत देखकर बेहद हैरान थी।